मुख्य समाचारों में, महारानी एलिजाबेथ ने अपने प्लैटिनम जयंती के अवसर पर कैनबरा में एक द्वीप के दोबारा नामकरण पर सराहना व्यक्त की। अफ्रीकी नेताओं ने रूसी गेहूं पर प्रतिबंध हटाने की मांग की और भारत में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, अल्पसंख्यकों को कश्मीर घाटी से बाहर नहीं बल्कि कश्मीर में ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। महारानी एलिजाबेथ ने अपने सम्मान में कैनबरा के एस्पेन द्वीप का नाम बदलने की सराहना की है। बर्ली ग्रिफिन झील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित ये एक कृत्रिम द्वीप है और अब इसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वीप के रूप में जाना जाएगा। नामकरण महारानी की प्लैटिनम जुबली के उत्सव का हिस्सा है जो एलिजाबेथ के सिंहासन पर 70 साल के राज का प्रतीक है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि रानी ऑस्ट्रेलिया की एक दृढ़ मित्र रही हैं। नाम बदलने के लिए एलिजाबेथ के प्रशंसा के संदेश को कॉमनवेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर विक्टोरियन गवर्नर लिंडा डेसू द्वारा पढ़ा गया।
इट्स अ लवली एंड काइंड जेस्चर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन एंड माय फैमिली एंड आई आर मोस्ट अप्रिशिएटिव। I hope Queen Elizabeth II Island continues to provide a place of enjoyment for all who go there.
Timor Leste ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के साथ सुरक्षा साझेदारी में नहीं जा रहा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी तिमोर लेस्ते के अपने क्षेत्रीय दौरा समाप्त कर रहे हैं। माना जा रहा है कि देशों के बीच समझौते में हवाई सेवा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक सहयोग शामिल है। कुछ प्रशांत द्वीप देशों ने चीन के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन तिमोर लेस्ते के अध्यक्ष जॉस रामोस होटा ने स्काई न्यूज को बताया है कि उनका देश जल्द ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है और उसे चीन के साथ सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
We don't feel threatened by anyone. We have the best possible relationship with the United States, with Indonesia, with Australia, New Zealand, Singapore, all the countries around us. We'll be joining ASEAN hopefully in the near future. Our strategic interests are with the countries in our immediate region.
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की 33वीं बरसी पर नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्य भूमि चीन में इस खूनी कार्रवाई की याद में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बड़ी वार्षिक निगरानी आमतौर पर हांगकांग में होती है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे बंद कर दिया गया है। पुलिस ने एक बार फिर कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए हांगकांग के विक्टोरिया पार्क को बंद किया है जहां पर विजिल की जाती थी। ताइवान चीनी भाषी दुनिया का एकमात्र हिस्सा हो सकता है जहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री ब्लिंकन का कहना है कि एक ओर जहां चीन में लोग अब अपनी बात नहीं रख सकते हैं, वहीं दुनिया भर के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि तियानमेन प्रदर्शनकारियों के अन्याय के खिलाफ खड़े होने और आज़ादी की मांग को भुलाया नहीं जा सकेगा। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल रूसी अनाज के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन वैश्विक गेहूं की आपूर्ति का लगभग एक तिहाई हिस्सा है, जबकि रूस भी एक प्रमुख वैश्विक फर्टिलाइजर निर्यातक है और यूक्रेन मकई और सनफ्लावर ऑयल का एक प्रमुख निर्यातक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करने के बाद श्री सैल ने कहा कि क्रेमलिन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेनी अनाज के निर्यात को सक्षम करने के लिए तैयार हैं। श्री साल कहते हैं कि ये युद्ध वैश्विक खाद्य संकट के बीच अफ्रीका की स्थिति को विशेष रूप से कठिन बना रहा है।
Et qu'il fallait absolument We told Russian President Vladimir Putin that he absolutely had to help to facilitate the export of Ukrainian seeds. But above all, Russia must also be able to export fertilizers and food products, mainly cereals, since it is the country that exports the most cereals. Obviously, these requests are incompatible with sanctions. This is why we thought, after this exchange, to appeal to Western partners. I also salute the American position on this matter, as they lifted the sanctions regarding food, provisions and fertilizers.
Putin ne Rusi rajya media se kaha hai ki Ukraine Odessa sahit bandargahon se anaj ka niryat kar sakta hai agar usne unhe mines se mukt kar diya hai. New South Wales mein police ka kehna hai ki paschim Sydney ke ek ghar mein ek party mein ek ladki ko lekar ladai mein ek 16 varshiya लड़के की मृत्यु हो गई है. लड़के की, जिसकी अभी तक सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं हो पाई है, सिडनी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से 49 किलोमीटर पश्चिम में रूप्स क्रॉसिंग में उसकी आज सुबह मृत्यु हो गई. उस पर चाकू से वार किया गया था. पुलिस कथित अपराधी की तलाश कर रही है, जिसके बारे में उनका कहना है कि वो एक म्यूचुअल मित्र है जिसे एक किशोर लड़की ने पार्टी में आमंत्रित किया था. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर पॉल टिकर का कहना है कि ये अपरिपक्व व्यवहार का मामला है जिसके दुखद परिणाम हैं.
Young boys, probably with some hormones running through the system. Somebody thought they had to defend the right of their girlfriend at the scene, and unfortunately, it's led to, you know, a young boy being killed. I mean, they shouldn't have been carrying knives in the first place.
और एनडीटीवी के समाचार के अनुसार, भारत में कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बीच केंद्र सरकार ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यकों यानी कश्मीर में गैर मुस्लिम को कश्मीर घाटी से बाहर नहीं बल्कि कश्मीर में ही सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा. ये निर्णय केंद्र द्वारा कश्मीरी पंडितों की उन मांगों के बीच लिया गया है जिसमें उन्होंने खुद को कश्मीर से बाहर भेजे जाने की मांग की थी. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि कश्मीर में हिंसा का स्तर बढ़ गया है, लेकिन ये जिहाद नहीं है, ये कुछ हताश तत्वों द्वारा किया जा रहा है. अधिकारियों ने गृहमंत्री को ये भी बताया कि कश्मीर घाटी में तालिबान की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है. जैसा कि विदित है, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में तालिबान के साथ अपनी भागीदारी शुरू की थी. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 72 सेंट और भारत के लगभग 56 रुपए के बराबर है. खेल समाचारों में, बॉक्सिंग में ऑस्ट्रेलियन जॉर्ज कैम्बोसिस ने मेलबर्न में कल यानी शनिवार 5 जून को अपनी लड़ाई के लिए आवश्यक भार बनाया है. अमरीकी डेविन हैली के खिलाफ अपनी हल्की लड़ाई के लिए कैम्बोसिस का वजन सीमा से 163 ग्राम अधिक था. कैम्बोसिस आधुनिक युग में लाइटवेट डिवीजन का निर्विवाद चैंपियन बनने वाले पहले मुक्केबाज बनना चाहते हैं. उनके पास मंजूरी देने वाली 4 संस्थाओं में से 3 खिताब हैं और वो कल शनिवार को हैनी की वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के खिताब को लेने की कोशिश कर रहे हैं. और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री. मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री. होबार्ट में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री. कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री. सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री. ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री. और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस. और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए.